તારીખ 7/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 85 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
अशाता का एक प्रकार है दुख वेदक. सामान्य रूप से कहें तो दुख वेदक दुख वेदन के विषय में विशिष्ट बात वो है कि जीव के परिणाम जितने अंश में बाहर जाएंगे उतना दुख का वेदन होता है. जीव के परिणाम जितने स्वरूप आस्थित रहेंगे अंतर्भूत रहेंगे उतना सुख का मिलन होगा. ये इसका मूलभूत सिद्धांत है. फिर शरीर की असाता के कारण से वहां जाप परिणाम या दूसरे किसी भी उदय के कारण से परिणाम बाहर जा बाहर जाने का तो उदय भाव ही बाहर जाता है. सार भाव में उदय भाव ही बाहर जाता है और वही जीव को दुखदायक है. और दुख का एक अंश भी पसंद करने योग्य है वो बात तो कोई जीव स्वीकार करेगा
नहीं.
अशाता की बात को इसलिए इधर चलिए कि इस मनुष्य गति में हम लोग कहा है वहां यह स्थिति दूसरे अनेक प्रकार के पुण्योदय होने के बावजूद भी ये स्थिति अनिवार्य है. ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता कि जिसको अशाता रजनी आई न हो. पुण्य के अनेक प्रकार हैं. इसमें शाता वेदनी एक पुण्य का प्रकार है और तो दूसरे दूसरे भी पुण्य के बहुत से प्रकार हैं. फिर भी मनुष्य को अशाता वेदनी नहीं आएगी वो बात बनने वाली है. इसको जन्म से ही दुख है. जन्म के काल का भी बहुत दुख है. बाल्य अवस्था में भी अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं. वृद्धावस्था में भी अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं. ये दो अवस्था तो रोग को आने के लिए खास स्थान है क्योंकि उसमें शरीर विज्ञानी ऐसा है कि वाइटलिटी बहुत कम होती है और कोई भी रोग को आने के लिए बहुत अवकाश है. इसलिए पीड़ा नहीं चाहते हुए भी और दूसरे बहुत प्रकार के पुण्य के उदय होते हुए भी जीव को असाधा वेदनी भोगनी पड़ती है. और असाधा वेदनी का एक विशिष्ट वेदन ऐसा भी है कि वो उपयोग को और जगह जाने नहीं देते. संसार में दूसरे दूसरे उदय में तो उपयोग को दूसरे उदय में लगाने का बहुत तौर तरीका भी है। घर का एक सज्जन मर जाता है, सभी को दुख होता है, लेकिन बाद में तेल में दिन में मिठाई भी लोग खाने की शुरुआत कर देते हैं। ये सब क्या है कि ये दुख को भुलाने का तौर तरीका है, कृत्रिम। कैसे भी धनी मर गया तो भाई को भी नहीं, बच्चा तो है तेरे पास, कल बड़ा हो जाएगा, उसको भी बहू आएगी, ये होगा वो होगा, बच्चे होगा, तुम्हें घर हरा भरा हो जाएगा, वो हो जाएगा। उपयोग को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में ले जाते हैं। कुछ नहीं है तो पैसा तो है, पैसा नहीं है तो समझ लो तो है, कुछ तो है। ऐसे करके दुख के उदय को आलम्बन उस उदय का छुड़ा करके दूसरे उदय में लेना देने का बहुत बहुत तरीका संसार में। किंतु एक असाध्य वेदनी ऐसी है कि उसमें कोई तौर तरीके काम में नहीं आते। ये चीज ऐसी है कि वो कोई भी कितना भी पुण्य संपन्न हो, पीड़ा का उदय आया उसको भूलना ही पड़ेगा, चिल्लाना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए तो भी उपयोग वहां ही जाएगा, भूलना ही पड़ेगा। जो उत्तम विचारवान पुरुष थे इसका भी कोई रास्ता तो निकालना चाहिए, हमें तो दुख नहीं भोगना है, नहीं भोगना है तो इसका रास्ता भी निकालना है, जो भी है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि अगर हमारे परिणाम, हमारा उपयोग हमारे सुखधाम में लगे तो असाध्य वेदनी कुछ नहीं है, अगर वहां नहीं लगे तो दुख ही दुख है, या तो असाध्य वेदनी या दूसरा कुछ भी दुख तो दुख ही है। ये विज्ञान जो है ऐसे तो हमारे देश में कोड़ापोड़ी सागर से अभी इतिहास देखे तो आदिनाथ भगवान सुखदेव स्वामी से ये बात कर सकते हैं, सभी तीर्थंकरों ने ये बात बताई, ज्ञानियों ने भी यही बात बताई, और अनंत काल से ये अभिप्राय, ये विज्ञान खुलना है, कभी नाश पाया इसका अनुवाद किया है। अब तो जीव की विचार शक्ति चाहिए, विवेक शक्ति चाहिए, जगत में एक प्रकार भी मौजूद है, उसका अभाव नहीं हुआ है, लेकिन कोई मन आपको बुद्धि को मन को बंद कर देता है कि क्या करे, समय का होता है ऐसा हमारा होता है, तो उसको खोज नहीं होगी, खोज होगी तो जगत में पदार्थ नहीं है, मार्ग नहीं है, वस्तु नहीं है, ऐसा अब कहते हैं कि किसी भी प्रकार के असाध्य का तीव्र से तीव्र उदय होने पर भी जिसका आत्मवीर्य उल्लासित रूप से आत्मा में लगने लगता है, ऐसा वे क्यों कर सकते हैं महापुरुष, हम नहीं कर सकते हैं, और वे महापुरुष ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसके लिए कालवे ने भी पूरा कार्य रख दिया है। एक प्रयोग है भीतर का, इस प्रयोग की प्रैक्टिस अगर तुमको हो जाएगी, सुख की चाहना के कारण से, सुख की भावना के कारण से, तो ये काम आसान है, बराबर कोई उसमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं, इतना आसान सुगम सरल है उसको कहते हैं। उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरित ऐसा आत्मा को, कैसा आत्मा लिया हुआ इधर, कि जो उपयोग लक्षण द्वारा निरंतर सनातन मैंने अनादि अनंत, कोई काल ऐसा नहीं है, उस सनातन स्फुरित है, सदा अनुभूति स्वरूप है और सभी जीवों को अनुभव में आई रहा है। उपयोग से ज्ञान के विज्ञान से बात लिया है, वो तो अनंत है, लेकिन एक जगह है जैसे कल रात्रि को चर्चा चली कि भी रफ हीरा में भी हीरे हीरा को देखने की एक जगह है, हम तो नहीं जानते क्योंकि हमने रफ का काम नहीं किया कभी कल बोले जब पता चला वहां तक तो हम नहीं गए, और थोड़ा थोड़ा वो देखा है एक लाख जाकर, लेकिन उसने नहीं गए। कल उसने हम लोगों ने बताया भाई तो उसमें कोई ऐसी चीज है, सुबह चर्चा चली अपने घूमते हुए कि अज्ञानी के पास भी अज्ञानी के पास भी
સંકોચ નહીં કરવાનો, તમે આગળ ને ઉભા
અજ્ઞાની કે પાસ ભી એક હૈ જગા
હૈ
પર યે જગા હૈ લોગ અબ ક્યા હૈ એક જો હમારી તકલીફ હૈ વો પૂર્વક રહે ઉપયોગ કો જાનને વાલા એ સમજા હૈ और जो विशेष अनेक प्रकार का नियाकार रूप ज्ञान होता है उतना ही उपयोग का स्वरूप हमारे पूर्वग्रह में है। ये पूर्वग्रहित ग्रहित परिस्थिति हमको विटमना का कारण बनती है, जबकि उपयोग का उतना ही स्वरूप नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में भगवान पूज्यपाद स्वामी ने वो बात किया है, ज्ञान का दो रूप है, ज्ञेयाकारम नानाकारश्च, ऐसा करते हैं ज्ञान द्वैरूपम ज्ञेयाकारम नानाकारश्च। ज्ञान का दो रूप है हमेशा, ज्ञेयाकार भी होता है और ज्ञानाकार सदा ही रहता है। जो ज्ञेयाकार है वो अनेकाकार है और जो ज्ञानाकार है वो एकाकार है, और वस्तु का स्वरूप भी एकाकार है और स्वभाव सुदृश है और प्रगट वेदन रूप है। स्वभाव में वेदन नहीं है, ये तो प्रगट वेदन रूप है। पहला तो अस्तित्व ग्रहण होता है ना, वेदन से तो पहला पहचान होता है, वेदन रूप लक्षण है, लक्ष्य होने के लिए वही एक साधन है। अनुभवान से प्रतीति, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, सात सौ इक्यावन में वो बात है। वो जो लक्ष्य का स्थान है उससे जाने होने से विज्ञान सामान्य की चर्चा आपको कहीं समझ नहीं मिलेगी। जो अंतर्मुख होने की चैनल है, विधि की जो चैनल है, इतने इतना विषय खोल करके गुरुदेव ने रखा है, समय सारा आदि शास्त्रों ने रखा है, लेकिन हम लोगों की चर्चा में ये बात क्यों नहीं है। तत्व चर्चा बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं तत्व के ग्रंथ, तो जहां से लक्ष्य होता है तो उस विषय को हम छोड़ देते हैं तो कितने भी दूसरे दूसरे बात करेंगे इसमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा इससे। तो पूज्यपाद स्वामी ने वो जो बोलो बात लिया है, ज्ञानाकार भी है ज्ञेयाकार भी है। अब ज्ञेयाकार से तो परिचित है, तेरा अनुभव है, लेकिन ये तो फिसल करके उतर जाने की बात है, पर ग्रह में बह जाएंगे तेरे परिणाम, तो उसमें तो कोई हमारे कोई परमार्थ का विषय सुख का कारण ये शायद तो नहीं है। इसलिए भी पर के जानने के विषय में कुछ निषेध कहीं देखा जाता है तो यही कारण है। जबकि ऐसा बन नहीं सकता कि पर को जानने का बंद हो जाए, उपयोग पर को जाने ही नहीं ये परिस्थिति में बंद नहीं कर सकते, लेकिन जानते हुए भी उसको गौण करके तिरोभित कर सकते हैं, लक्ष्य में से हटा सकते हैं। आपको ये लक्ष्य नहीं देना है तो सुनकर के भी मैं उसका उसका दुर्लक्ष कर सकता हूं। ऐसे पर जनाए बिना रहेगा नहीं, अपर प्रकाशक शक्ति होने से पर का प्रतिबिंब ज्ञान में आए बिना रहेगा नहीं, उसको रोक सकते नहीं, उसको निकालने के जाएंगे तो मिथ्या तो ग्रहित पैदा हो जाएगा। ज्ञान में से ज्ञेयाकार को निकालो, तो निराकार तो स्वयं स्वयं ज्ञान है, ज्ञान के निकालने का बात हो जाएगा, ये तो गृह प्रख्यात हो जाएगा। राजमल जी साहब ने समय साल की काम है 252 से जो कलश लिए हैं सब, जो अनेकांत के 14 थे, उसमें हर जगह वो बात लिया है कि कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है कि ज्ञान में से मैं को मैं आकार को निकालना चाहता है, ये मिथ्यात्मा है, ऐसा हो सकता
नहीं,
बन सकता नहीं है। अरिसा रखो और सामने चीज रखो और आपको अरिसा में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ना चाहिए, कैसा बन सकेगा? वो वस्तु स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति को मिटा सकते हो? ये तो बनने वाला नहीं है। लेकिन वहां वहां से दो प्रकार के प्रोसेस चालू होते हैं। जो स्वयं को नहीं जानता है और सामान्य के प्रति जिसका वलन ढलन नहीं है, झुकाव नहीं है, वो उधर बह जाता है। जिसका प्रतिबिंब आता है उसके प्रति उसका परिणाम का वलन हो जाता है, वो दुख का कारण होता है, इससे दुख की उत्पत्ति होती है। ये दुख है वही आत्मा के सुखामृत के सामने जहर बोला जाता है। यहां से अगर भिन्नता का अनुभव करें ये कहेंगे कि उपयोग ही भिन्नता करने का कारण है, दूसरे गुण तो स्वतंत्र प्रकाशक नहीं है। अनादि से पर से एकत्व हुआ है, देहात्म वृत्ति हुई है, राग से एकत्व हुआ है, तो भिन्न करने के लिए साधन कौन है? कि उपयोग, उपयोग स्व पर ऐसे दो को दो जान सकने का सामर्थ्य उपयोग में है। एकत्व करने का भी वहां से होता है और भिन्नत्व करने का भी वहां से होता है। जहां से एकत्व हो वहां से ही भिन्नत्व हो पाएगा, दूसरी जगह से नहीं हो पाएगा। एक डोरी में गांठ पड़ी है तो जहां गांठ पड़ी है वहां खोलनी पड़ेगी, दूसरी जगह खोलने से वो कहां से खुलेगी? तो एकत्व तो ज्ञान स्वयं करता है, भिन्नत्व भी ज्ञान को ही करना पड़ेगा। जहां भूल होती है वहां से भूल छूटेगी, भूल कहीं और छूटे कहीं
नहीं,
आग इधर लगे पानी उधर डाले आग कैसे बुझेगी? प्रैक्टिकल साइंस। इसलिए उपयोग जो है वो पर को जानता है तो उसको भिन्नत्व करने में मिला, नहीं जानेगा हम कल्पना करेगा तो हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम जान सकते ही नहीं, तो ये कल्पना में मिले मिथ्यात्मा है, ऐसा कभी नहीं लेना है। और ये लोग ले लेते हैं, वो बिना समझे ले लेते हैं, ऐसा लोग समझ लेते हैं, कोई ऐसे बात भी आती है कि उनको पर का बलन छोड़ना चाहिए, उसमें वहां से लोगों के जानने में नहीं आवे तो एक गलत समझ सिद्धांत टूटता है, प्रबल प्रकाशक का सिद्धांत टूट जाता है।
इसमें बोला ग्रहित मिथ्यात्व हो जाते हैं,
हाँ वो नहीं कल्पना करे। जो मुक्त होने की विधि है वो प्रयोजन रूप विषय है,
बराबर
प्रयोजन के विषय में बुद्धिपूर्वक की गलती भूल ये ग्रहित मिथ्यात है, ये सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात है। फिर जो ये खुद को गुरु शास्त्र और इसका फल है तो ये स्थूल ग्रहित मिथ्यात है, बाकी भूल से दुनिया से पैदा होता है
बुद्धिपूर्वक।
हाँ बुद्धिपूर्वक भूल करता है वो एक स्वरूप के विषय में और एक स्वरूप के प्राप्त होने की विधि में, दो विषय बहुत एकदम प्रयोजन भूत है। उस विषय में बौद्धिक स्तर पर कल्पना हो जाए भूल हो जाए ये विप्रयास है और ये ग्रहित मिथ्यात है, और ग्रहित नहीं रहेगा अन्य मत ही हो जाएगा। अन्य मत में तो मुसलमान आदि सब है, वर्ग एक हो जाएगा, एक ही क्लास का विद्यार्थी हो जाएगा, कोई अगली बेंच में कोई पिछली बेंच में बैठता ही नहीं, फर्क है क्लास तो सही है उसका।
जितनी बड़ी भूल इतना बड़ा उसका रिजल्ट, जितनी बड़ी भूल इसका इतना रिजल्ट इतना बड़ा।
हायर द पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी बहुत है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो ये तो आत्मा को अनुभव कराने की चीज है, वहां गड़बड़ कर जाते हैं तो नुकसान भी बड़ा होता है, बड़े व्यापार में नुकसान बड़ा, कोई सब्जी वालों को करोड़ों का नुकसान होता है, जो हमेशा 500,000 रुपए का साग की दुकान लगा करके बैठता है उनको करोड़ का नुकसान होता है, आग लग जाएगी तो 1,000 रुपए का माल जल जाएगा इसका, तो क्या होगा आगे जाकर के। लेकिन जिसको करोड़ों का व्यापार है उसको लाभ भी लाखों का, नुकसान भी लाखों का, लाभ मुनाफा भी करोड़ों का, नुकसान भी करोड़ों का। व्यापार बड़ा है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से करने लायक है, बहुत गंभीरता है इसकी, बहुत
अनजाने में ऐसे
तो कर जाते हैं, अनजाने में क्या क्या कर जाते हैं। देखिए, जहर तो जानबूझकर पियो या अनजाने में पियो, ऐसा जहर को बोल सकते हैं। तुम्हें हमको तो मालूम नहीं था इसलिए हमें नहीं मरना चाहिए, जानबूझकर पियो तो भी मरेगा, अनजाने में पी जाए वो तो भी मर जाएगा, मर जाओगे।
अनजाने में पियो तो
क्यों, उसने पीने के पहले क्यों कुछ उसकी जांच तलाश नहीं की। तो पेट में डालने की चीज है तो कुछ जो भी कुछ खा रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या कि जो भी पड़ा है उसको खा ले। ऐसे जब हमारा हित हित का प्रकरण चलता है तो बहुत सावधानी हमारी होनी चाहिए। हम किधर भी सुनने को बैठ जाएंगे, कोई भी सुनाता है ना हमको, तो हमेशा सुनाता है ना, इसलिए हमको तो वादा नहीं है, ऐसा नहीं सकता।
उसमें ये भी आ गया,
हम दूसरी बात नहीं सुनते, हम तो कुंदन भगवान का समय सार सुनते हैं, क्योंकि समय सार सुनाता है, ऐसा नहीं चलता है। हमारे एक विद्वान थे, आए थे आगरा के शिविर में, वो वैद्य वैद्य है ना, गंभीर मंत्री वैद्य आए
थे,
उन्होंने वो दृष्टांत अच्छा दिया था कि भी कोई एक गिलास में कोई दारू पीता है, उस दारू तो पी लिया उन्होंने घंटे भर में, वो तो वेपोराइज होता है इसलिए उड़ जाता है अल्कोहल है, तो उसमें तो गीला भी नहीं रहता है, पानी का गिलास तो गीला भी रहता है, ये तो सूख जाता है। अब ये जिसने इसमें दारू पिया वो सूख गया, अब इसमें गंगा जल पीना करने पीना क्या बोला इस गिलास में गंगा जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बताइए पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मालूम है नहीं क्यों, इसमें सामान्य बुद्धि से भी नहीं पीना चाहिए, ये समझ सकते हैं। दारू के पार्टिकल्स थे उसको बिना साफ सुथरा किया गंगा जल पीना नहीं चाहिए। मैं ले जाइए आपके घर में ये बात होती तो ये आप होटल में चले गए कभी, मित्रो से जाते कि नहीं जाते, जाते थे कि नहीं जाते हैं होटल में, तो वहाँ तो कोई बार वाली भी होटल होती है, हमको पता चला लोग इधर पीते भी हैं क्या, तो क्या करोगे ऐसे पीने लग जाओगे क्या है, क्या दिक्कत क्या आएगा। कॉमन सेंस से ये बात आ गई कि अपने को किसका झूठा हो दारू वाला हो कुछ भी पानी पीना है, बिना जल्दी सामान्य पानी पीना है तो उसको साफ करके पानी, तो उतनी वहां तो सामान्य बुद्धि भी काम करती है, पर इधर हम बुद्धि खो जाते खो करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं चलता।
अभी तो बोलते ना बुद्धि का काम नहीं है,
क्यों विवेक किसका काम है, विवेक किसका काम है, बुद्धि में नहीं, यथार्थ बुद्धि योग्यतावान की बुद्धि, ऐसा बुद्धि नहीं हो, एटम बम बनाने वाली बुद्धि का काम नहीं है, ऐसे बुद्धि का काम। तो बात वो है कि बहुत सावधानी से चलने की बात है, कृपाणु देव लिखे हैं देखते हैं कि ये पंचम भाव है, भोग मुक्ता पाप लागे आएगी कैसा लिखा है, एक कदम कहां भरना इसका विचार करने की जरूरत, ऐसा काम ऐसा है भोग मुक्ता पाप लागे, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है,
संपूर्ण परीक्षक दृष्टि।
हाँ, उसमें हम यदि वैसे चला है तो थोड़ा मार्गदर्शन वो है, दो मुद्दा देखना है। ये कितना भी कोई विद्वान हो सकता है, शास्त्र के जानकार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, उपदेशक वृत्ति से बात करता है या अपने स्वाध्याय वृत्ति से, एक वो देखना। जब उपदेशक वृत्ति से बात करता है समझ लेना कि ये मान भुला हुआ है, उनको भान नहीं है कि मेरी क्या स्थिति है, उपदेशक का गुणस्थान ही नहीं है, वर्तमान में उपदेशक का कोई गुणस्थान नहीं है।
इसको बांध
कुछ भी कहो फिर तो 837 में कहते हैं कृपा देव का रचना प्रताप दे दो, वो तो ऑथेंटिक है अपने लिए। दो चीज आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग। ये गाथा का पथ आत्मसिद्धि शास्त्र का 10वां पद है। आइए इसका अर्थ प्रकट करते हैं। मैं क्या कहा, सदगुरु के योग्य लक्षण मुख्य रूप से कहा कौन से गुण स्थानों में संभवित है। दो प्रश्न उठाए फिर वो भी खुद ने प्रश्न उठाए खुद उत्तर देते हैं। पर समदर्शिता माने क्या, तो पहले कहते हैं कि सदगुरु योग्य लक्षण दर्शाए हैं वो मुख्य रूप से विशेष रूप से उपदेशक अर्थात मार्ग प्रकाशक सदगुरु के लक्षण कहे कहे हैं। उपदेशक गुणस्थान 6वां और 13वां है। क्या उपदेशक गुणस्थान 6वां और 13वां है? 6वां संविकल्प दशा होने के 13वें विकराग अनिच्छा पूर्वक जो माने निकलती है वो गुणस्थान है। तीसरा कोई गुणस्थान नहीं, 5वां नहीं, 4वां नहीं, ये विद्वानों का तो नंबर ही नहीं है उसमें। वो तो पहले गुणस्थान में है, क्या नंबर आएगा जब 4थे वाले का नहीं 5वें वाले का नहीं तो पहले वाले का कैसे आएगा, इसके पहले तो पहला ही होता है। उपदेशक के हिसाब से बात जो चलती है हम विषयांतर नहीं करेंगे, बात जो विषय चलता है उसको तो विषयांतर नहीं करेंगे। आपको तर्क तक आ सकता है लेकिन तो विषयांतर करे बिना चलेंगे। तो उपदेशक जो है चतुर्थ और पंचम स्थान वृत्ति मार्ग में चलने वाले मार्ग के जानकार और मार्ग प्राप्त और मार्ग दर्शाने के लिए सक्षम है। उतनी बात अवश्य होने पर भी क्या उपदेशक का वो स्थान
नहीं है? कितना संतुलन है
तो पांडव बहुत गहराई से ये बात करते हैं। लोग तेरे पर शंका करेगा तो उपदेशक बन जाएगा तो पुरुष तुझे क्या कहने पड़ेगा कि मुमुक्षु का प्रारंभ पूर्ण वितरागता के लक्ष्य से होता है। पूर्ण वितरागता क्या, अब तो उपदेश हो गया, उपदेशक बन गया मानो तो पूर्ण वितरागता उपाधि है। और वो कहते हैं तुम्हारा जब राजाय का समय पूरा हो जाएगा, उपदेशक का विनय पूरा हो जाएगा तो दुकान पर चला जाएगा, पर चला जाएगा क्या होगा, क्या हालत होगी? उस हालत में भी लोग तो तुम्हें देखेगा, वितराग मार्ग पर शंका करेगा, ये कहता है कुछ करता है
कुछ कुछ
मायाचारी का धंधा है। तो ऐसा पूर्ण पवित्र जिनेन्द्र के मार्ग को लांछन हम क्यों लगाए उपदेशक बन के, हमारी गलती है। मेरा है कहने की कौन सी जगह है, तीर्थ मात्र जिसको परिग्रह नहीं है उसको अपेक्षा कौन सी है। और इनके लिए कोई भी व्यवस्था की जाए प्री प्लान तो स्वीकार नहीं करते, हर दिन उद्देश्य का हर कार्य कौन वो स्वीकार नहीं करते, पांच का एक दिन भी नहीं, पांच छूट जाए तो छूट जाए। तो खुद तो अपेक्षावान नहीं है, लेकिन कोई इसके लिए करे तो उसका स्वीकार नहीं है। नौ कोटि से पचकार है, कभी करना कराना अनुभव। इसलिए नहीं कहते हैं कि ये तो चलते फिरते सिद्ध है, ये तो चलते फिरते सिद्ध है, ऐसा करते हैं। मोक्ष तत्व में और भावलिंगी सिद्ध में कोई फर्क
नहीं,
वो देश के अधिकारी है, इसलिए कि वहां किसी को कहने की कोई अवकाश गुंजाइश
नहीं।
इसलिए सातवें से बारहवें तक का गुणस्थान अल्पकाल वृत्ति है और निर्विकल्प है, इसलिए उसमें उपदेशक वृत्ति उसमें संभव थी। मार्ग उपदेशक प्रवृत्ति छठवें गुणस्थान से शुरू होती है, इसके पहले शुरू ही नहीं होती है। चौथे पांचवें वाले दूसरे जिज्ञासु जीव को मार्ग दर्शा सकते हैं कि हम इस मार्ग से भीतर में गए, तुम भी इस मार्ग में जा सकते हो, इस मार्ग से जा सकते हो, हमारा देखा हुआ मार्ग अवश्य है। तुझे कोई जिज्ञासा हो तो हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उपदेश उपदेशक होकर के बन करके
नहीं। कभी
दिखाए उन्होंने, हमने किसी को एक व्रत पचकार नहीं दिया, दिखाए कि नहीं दिखाए, ऐसा लिखने का क्या कारण? कि आप कुछ भी मानते हो, हमको भगवान बोलते हो, प्रभु बोलते हो, सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमको उपदेशक बनना नहीं है, उपदेशक है भी नहीं, पर एक पचकार भी किसी को दिया
नहीं
है। बहुत सावधान
है,
अपने आप में बहुत सावधान। एक तो वो देख लेना है, ये वृत्ति संभव थी हो वहां से दूर हो जाना है, ये अपना काम नहीं है, वो खुद अपने को नुकसान करता है, अपने को लाभ होने का निमित्त तो इसमें नहीं है, खुद नुकसान का धंधा में बैठा है, तो उसका दोबारा निकलने वाला है, वो अपने को कैसे कमा करके देगा, तो उसमें कोई सवाल नहीं है। ये बात तो दूसरी बात तो देखने की, वो सूक्ष्म दृष्टि की, ये तो स्थूल दृष्टि में भी समझ में आ जाता है, थोड़ा भी आदमी चकोर होता है, विचक्षण होता है, समझ लेता है। दूसरा जो सूक्ष्म दृष्टि
वृत्ति में, उपदेशक वृत्ति में और स्वाध्याय वृत्ति में क्या फर्क?
उपदेशक वृत्ति में ये दूसरे को बहुत कहेगा, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, बस वो इतना लक्ष्य बन जाता है उपदेशक वाले को कि जैसे स्वयं तो सर्वगुण संपन्न लगता है, पर दूसरों को सुधार करने का बहुत करते आता है,
गुरु बुद्धि
बहुत आ जाती है।
वो तो जैसे यहाँ इस सीट पे नहीं बैठे फिर भी हमारे अंदर अंदर का ऐसा चलता है
क्या? सीट पर ही नहीं बैठते, बाकी अंदर तो हम ही आचार्य बन जाते हैं, आपस दूसरे को समझाना सिखाने के लिए बहुत अग्रसर हो जाते हैं। ये तो पड़ी है, दुर्गुण तो सब पड़े हैं भाई संसार में, तो इसके लिए तो दुखी है, सब दुर्गुण पड़े हैं और इसका फल तो भोग रहे हैं, दुख तो भोग रहे हैं, अब तो सब सोच समझ करके निकालने की बात है, वो कोई लाना नहीं पड़ता। 10 साल की बच्ची होती है तो बाल ऐसे करना, कपड़े ऐसे करना, ऐसे करने लग जाती है उसको, कोई ट्यूशन थोड़े जाते हैं, कोई लड़का भी ऐसा करना लग जाता है, मुंह देखना ऐसा करना, वो करना क्यों? ये सब पढ़ाए हैं, चार संज्ञा अनादि से निगोद से लेकर के सभी नियम को पढ़िया, क्या सिखाना पड़ता है? सिखाने की चीज थोड़ी, और उसमें सब सब दुर्गुण आ गया, चार संज्ञा में कोई दुर्गुण बाकी
नहीं
रहता, यही पनपता है और क्या पता है। दूसरा जो देखने का है वो आत्मा की तो बात अध्यात्म की मिलेगी, स्वरूप ऐसा है, दृष्टि का विषय ऐसा है, प्राप्त करने की विधि ये स्वयं प्रयोगात्मक चीज होने से इस प्रयोग में गुजरे बिना इनकी वाणी में उस चीज की झलक नहीं आती है, उचित तो वाणी में आने वाली है ही नहीं, क्योंकि प्रयोग तो परिणमन है, परिणमन वेदन रूप होता है, वो तो वाणी का विषय नहीं होता है। जैसे वेदन ऐसा शब्द आया, जैसे कुछ अंश आएगा, कुछ शब्द आएगा, वो तो संकेत मात्र है, आउटलाइन है, अंडरलाइन नहीं है, वो लेकिन वो कैसे होता है, वो मार्ग की विधि जो है, जो वो प्रकाश करता है, उसका जो प्रकाशक है, तो ये उसको मार्ग की खबर है, तो वो मार्ग दिखा सकता है, लेकिन खुद ही अंधा है, मार्ग जाना ही नहीं है, वो मार्ग दिखाएगा कैसे?
बराबर,
मार्ग नहीं नहीं दिखाएगा तो वो क्या करेगा कि जो दिखाएगा वो उन मार्ग होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की बात है, बहुत सावधान रह करके हमको संग करना है, जिसका भी संग करने को जाना बहुत सावधान होकर नहीं करो, आपत्ति नहीं है, नुकसान से तो बचोगे, लेकिन करोगे तो पूरी परीक्षा करना है और सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करना है विधि का विषय कैसे चलना है। और इसमें आप एक दो तीन चार प्रश्न निकालोगे, जाना अनजाना में आपको समझ में कोई देर लगने वाली
नहीं
नहीं है, समझ में आ ही जाता है। अब कोई भी चीज खरीदने को जाता है, भले आप हीरो को नहीं जानता है, सोने को नहीं जानता है, लेकिन चार छह दुकान पर आप कस लगाते हो, पूछते हो और उल्टे सुलटे प्रश्न करके देखते हो तो सब पता चलता है कि घड़ाई क्या लगती है, माल कितना होता है, वो चीज कितनी होती है, वो चीज कितनी होती है, सब थोड़ा बहुत तो ध्यान में आ ही जाता है। फिर विश्वास करना पड़ता है कि इसके यहाँ से लेगा, मुनाफा तो सब करेगा, लेकिन मुनाफा भी रिजनेबल होता है तो मंजूर है, रिजनेबल नहीं होता है तो वो मुनाफा नहीं है, लूट हो जाती है, चित्रकंडी हो जाती है। इस तरह से हमको लाभ हुए नहीं हुए, हम लूटा तो नहीं जावे, ये तो पूरा भाव चला जाएगा इसके पीछे, ये बात हो जाएगी। श्रद्धा का विषय दूसरा हो गया कि बात खत्म, मार्ग का विषय दूसरा हो गया कि बात खत्म, ये प्रयोजन भूत विषय है। वैसे तो हमारे यहाँ जो विद्वान लोग हैं, मुनि तो कोई मुनि का संग तो अपना है नहीं ना, तो स्वाध्याय कराने वाले जो है उसमें भी इसके टोन तो पकड़ सकते हैं, उसका जो टोन है वो तो पकड़ सकते हैं, उपदेशक का टोन आता है कि नहीं आता है, मानो कि नहीं आता, अच्छी बात है, हमारे लिए स्वाध्याय की ठीक जगह है, वन पॉइंट तो उसका उसका वो तो खराब नहीं है, अब सेकंड पॉइंट देखना है। तो अपने को तो मार्ग के लिए आते हैं, सन्मार्ग के लिए आते हैं, अब सन्मार्ग के विषय में जो कुछ बात नहीं हमको मिलती है तो फिर हम क्या क्या लेके जाएंगे, पहले तो ये सवाल है कि सेकंड के लिए कभी आपने कोशिश किया है कुछ? क्या है कोशिश?
किया है तो बता रहे हैं, किया है तो बता रहे हैं,
तो मुश्किल है तो मुश्किल है, इसमें क्या है, अच्छी चीज तो जल्दी नहीं भी मिलती है, हर जगह कोई कोई विराट कोई तो सब्जी के तरह कोई बूंद लगा के बेचने को निकलते है गली गली पे लारी लेकर के, वो लारी बोलते क्या बोलते, चार फोर व्हीलर होती है ना, लारी बोलते है ना, तो वो कोई जैसे वो सब्जी ले जो है ऐसा कोई चलता है, भाजी अच्छी आई है ऐसा ऐसा कोई, सोना अच्छा है, गहना अच्छा है, ऐसा कोई निकलता है क्या?
लाल तो कहीं दिखने में नहीं आता है, दिखने में
तो कोई बात नहीं, जिज्ञासा रखो, भावना रखो, चालू रखो, अपने सारे तो संभालो, फिर तो कुदरत के देन है, फिर तो कुदरत बंदी हुई है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत
नहीं है।
एक तो हम तैयार होते हैं पर दूसरे नहीं मिलते हैं, इसके लिए गुमागुम करते हैं, चीज नहीं मिलती है, चीज नहीं मिलती है, लेकिन लेने के लिए तैयारी है, ये बात है। यहाँ तो कोई गड़बड़ी है उसमें मिटानी नहीं है, फालतू को बाबू कर दिया, अपने को भूख लगी नहीं, कोई परोसते नहीं, कोई रसोई बनाते नहीं, कोई परोसते नहीं, कोई रसोई बनाते नहीं, परोसने वाले आएंगे रसोई बना कर देंगे, तुम खाओगे नहीं, बात ये हो जाएगी,
नहीं खा रहे हैं।
फिर वो प्रश्न तो गलत उठाते हो आप
जी,
जी। फालतू का क्या उठाना है, फालतू प्रश्न क्या उठाना है, ये उपयोग वाला विषय ऐसा है। तो उपयोग लक्षण से त्रिकाल सनातन स्फुरित है, स्फुरायमान होता है आत्मा, यहां से स्फुरायमान होता है
बराबर।
ये खान कैसे पता लगता है, हीरों के खान, सोने के खान का पता कैसे लगता है, क्या सोने के खान में कोई लकड़ी का ढेर पड़ा होता है, है? कोई ढीली पड़ी होती है सोने के खान, ये तो स्वर्ण पत्थर में कुछ पार्टिकल दिखने में आता है। पर इस बिस्तर विज्ञान का विज्ञानी है, कभी कोई पत्थर को देख करके उसको चमक होती है, अरे एक टुकड़ा हाथ में आया, मामूली पत्थर दिखता है लेकिन जिसमें सोना है, वो तो फिर बहुत परिश्रम करके, खुदा करके, गलाई करके फिर उसकी ढीली बनी, लेकिन कुछ पार्टिकल एक पत्थर के टुकड़े में देख करके उसको लगता है कि सोने की पूरी खान इधर है। तो पत्थर नहीं देखा, खान देखे
उसने,
हीरो में होता है, खान पता चलता है। वैसे हमारे जो उपयोग है वहां से खान है, अनंत ज्ञान के खान में जाने के बाद है। अनंत ज्ञान अनंत सुख सुख रूप है, ज्ञान है सो सुख रूप है, लेकिन हमने वो सुन लिया, कल्पना कर ली कि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत सुख है, तो यहाँ तो कुछ देखता नहीं है, अब क्या करें। ऐसे खान का पता नहीं, खान का पता ऐसे नहीं लगता है, वो तो ऊपर की चीज में थोड़ा नमूना आता है। ज्ञान सुख रूप है, कषाय का अभाव स्वरूप है, अज्ञानी का ज्ञान भी कषाय के अभाव स्वरूप है, बस वहाँ पता है इधर का खान इधर है, भीतर में चले जाओ तो करना पड़ेगा। बहुत शब्द इतना अच्छा निकला है कि आत्मा उपयोग में स्फुरायमान होता है,
सनातन
हर वक्त, सनातन मैंने हर समय, आत्मा उपयोग में स्फुरायमान हो ही रहा है। देखो तो नहीं दिखता है, कोशिश करो देखने की। जब हम कहते हैं तो कोई सोच समझ करके कहते हैं या वैसे ही फेंकते हैं क्या, ये तो मानना पड़ेगा
जी।
कहने वाले कोई फेंका फेंके
नहीं
करते हैं बातों की, कोई कहते हैं तो अनुभव की बात कहते हैं, हमको नहीं दिखते है तो हमें उसकी गहराई में जाना चाहिए। ऐसे आत्मा को
जरूरत वाला तो पहुंच ही जाता है, जरूरत वाला तो पहुंच ही जाता है,
जरूरत लगी और रुचि को पैदा करती है, रुचि ज्ञान को निर्मल करती है, नहीं दिखता है इसका कारण, ज्ञान निर्मल नहीं है। क्या
ज्ञान,
हमारे ज्ञान में हमारा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को हो कि अनंत गुण की खान, स्वभाव अनंत गुण की खान, नहीं दिखता है इसका मतलब क्या है, पर नहीं दिखता है इसका मतलब क्या, कि हमारा ज्ञान दर्पण मेला है, कैसा है
मेला,
सच है
मेला, रुचि नहीं है
मेला, क्यों है कि रुचि नहीं है, इसलिए रुचि क्यों नहीं है, जरूरत नहीं है बस। तो हम क्यों ऐसे क्यों कहते हैं कि बात आपकी समझ में आती है, बात तो न्याय तो थ्योरी तो समझ में आती है, तो हमारे ज्ञान में हमारा स्वभाव जो परमात्मा स्वरूप ही है, तिरुपति मूर्ति है पूरी, क्यों नहीं दिखती है, ज्ञानी कहते हैं कि है, हम कहते हैं कि दिखती नहीं है। तो दिखती नहीं है इसमें एक तो कारण मल है, दूसरा कारण हमारी दिशा उल्टी है, दो कारण है, जो अंतत्व स्वरूप है देखने के लिए ज्ञान को उधर करना पड़ता है। जीव को जीव का स्वरूप तरफ बलते हैं तब वो जीव मालूम पड़ता है कैसा है। तो एक को दिशा हमारी उल्टी है और एक जो है उसमें बल भी है। अब इसके लिए क्या करना है, दो मुद्दा है तो उसका भी बिल्कुल इंजीनियरिंग है, विज्ञान है उसका साइंस है। अब बिल्कुल एकदम क्लियर बात है वो कि मल का अभाव करना तो बहुत आसान है। मल का कोई इतनी चिंता नहीं है क्योंकि इतना मल नहीं जमा हुआ है। तुझे जरूरत लगी है क्या, तो मुझे पूर्ण शुद्धि चाहिए, कुछ दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक आशा नहीं, एक अपेक्षा नहीं, एक आकांक्षा नहीं। उसी वक्त तत्परता और विशुद्धि आ गई, विशुद्धि तो उतर ही आ गई। तो इसके लिए तो क्या है कि भावभाषण होने में उतनी दिक्कत नहीं है, उसको ज्ञान में निर्मलता रुचि के कारण होती जाती है। थोड़ी देर सुबेर होती है तो निर्मलता उसके होने की चालू है रुचि के कारण से। अब जो दिशांतर होना है ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, बहुत महत्वपूर्ण उसका स्तर है, वो तो भावभाषण से ही आता है, उसके पहले दिशा का मोड नहीं होता है। फिर भी उसका बहुत अच्छा कार्य पद्धति है कि जब हमने ये कहा कि उपयोग में ज्ञान विशेष भी है और ज्ञान सामान्य भी है, तो एक उपयोग का ज्ञान विशेष है वो बहिरंग है और ज्ञान सामान्य है वो अंतरंग है। अब ज्ञान अपने ज्ञान सामान्य को देखने का प्रयास करे तो कहाँ करेगा, विशेष से करेगा, विशेष से उधर जाता है। और जो अंतरंग है उसको देखने के लिए वो विशेष वाले भाव को उधर आना पड़ेगा, दिशा पलटेगी। का अवलोकन विशेष में आता है तब अपना वेदन वेद्य वेदक भाव से ग्रहण होने लगता है, उसका एहसास आता है। यही दिशांतर होने का पहला कदम है कि निजावलोकन करो, ज्ञान ज्ञान का अवलोकन करें कि ज्ञान में अनुभव क्या चीज है, वेदन क्या चीज है, पता नहीं लगे वहां तक उसकी खोज चालू रखो। खोज की जिज्ञासा को तीव्र बनाना है, मंद नहीं हो जाए उसका ख्याल रखना है। मंद कब हो जाएगी खोज की जिज्ञासा, मुमुक्षुता में पुराना हो जाएंगे तब।
हाजी
क्योंकि बहुत से बात सुनने में आ जाती है, मुमुक्षुता में ज्यादा साल जाता है तो क्या होता है, बात बहुत सुनने में आती है, बहुत पढ़ने में आती है। तो जिज्ञासा जो बात समझ में आ गई उसकी जिज्ञासा शांत होगी, जो समझ में आई उसकी जिज्ञासा शांत होगी, जो जिज्ञासा हो उसकी जो समझ में आए जिज्ञासा चली जाती है। तो जिज्ञासा नहीं चले इसके लिए क्या करना कि जो इधर प्रकरण सब चलता है ये भावों का चलता है। तो भाव है वो विचार से समझने की चीज नहीं है, अनुभव से समझने की चीज है। चुड़वा ऐसा होता है, मैसूर ऐसा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है, ये खाने की चीज है। जैसे हमारे सब भाव तो अनुभव में आते हैं, अदरक ऐसा में क्या अनुभव में आते हुए जो अनेक प्रकार के भाव हैं, उसमें भेद ज्ञान कैसे करना, कि हमारे अनुभव से भेद ज्ञान करना। राजमोहन जी 126 कलश में लिखते हैं कि अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से राग और ज्ञान भिन्न हो जाते हैं। अंतरंग क्या चीज है इधर कि ज्ञान सामान्य, अनुभव क्या चीज है कि वेदन। हमारा ज्ञान विशेष सूक्ष्म होकर के दिशा बदल करके जब अंत अपने आप में अंतर में मैंने अपने आप में अपने वेदन को सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहण करता है तो इस वेदन से चलता हुआ राग भिन्न मालूम हो जाता है। ये भेद ज्ञान अनुभव पद्धति से जो हुआ इसकी प्रैक्टिस चली तो इसका फल सारे शुद्ध उपयोग है। ये विधि विषय जो प्रक्रिया के कर्म से जो चलती है उसको पूरी बराबर पहले समझ करके जिज्ञासा को शांत नहीं करके क्या इसकी समझ करके जिज्ञासा को इस तरह से बढ़ाना कि ये बात तो मेरी समझ में आई है, काम तो पूरा बाकी है मेरा। तो मेरी जिज्ञासा वो है कि भले ही समझ में आई है लेकिन ये काम कैसे होता है, ये जिज्ञासा चालू हो जाएगी। और इसका प्रयास जो है ये किंचित करने लग जाए, वो प्रयास करने में कामयाबी सफलता नहीं मिले तो हम इसके लिए इसके जो तज्ञ है विशेषज्ञ हैं इससे हम परामर्श करें, दर्शन करें और उसके उससे वो हमको और आगे बढ़ने में हिंस मिल जाएगी। उसमें तो हिंस की जरूरत पड़ती है, लंबा थोड़ा लेक्चर का विषय तो हिंस मिल सकती है, ग्रंथ समय भी पड़ी है, ज्ञानी उसके पास में पड़ी है, मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये पूछता है वो क्या चीज पूछता है, वो उसका ग्राहक है कि नहीं है तो पता चल जाता है। तो ग्राहक को तो देने वाला कोई लोग करता तो कोई उदारता करेगा, ग्राहक नहीं है तो देने वाला भी क्या देगा, लेने वाला भी क्या देगा, ये आरोपों में पहले चरण में बहुत ग्राह है उपयोग लक्षण से आत्मा स्प्रायमान होता है, सब कुछ स्प्रायमान होता है, सनातन स्प्रायमान होता है, सभी समय में हर समय में वो स्प्रायमान हो ही रहा है। जहां से उपयोग उठता है यही मेरी चैतन्य भूमि है, यही मेरी चैतन्य भूमि है, वही मेरे अनंत स्वभाव के खान भरे हुई है। मैं इंधन उपयोग को नहीं लगा करके मेरे में अंतरण में लगाऊ निशान कर तो हो गए कम से कम, तो उससे उसमें क्या आगे आधा आगे आधा जो प्रतिबंध की जाएगी कि देह प्रतिबंध और विकल्प प्रतिबंध, दो प्रतिबंध को हटाने का एक प्रयास करना उसी का नाम भेद ज्ञान है। और ये सारा पैराग्राफ भेद ज्ञान पर चला है, भेद ज्ञान पर सारा समय सार लिखा गया है। कुंदकुंदाचार्य देव ने और अमृत चंद्र आचार्य देव ने नव तत्वों तत्वों के माध्यम से भेद ज्ञान का निरूपण किया है। सारा समय सार का सवर्ण सूत्र तो है तो भेद ज्ञान है, एक अधिकार आप दिखा दो जिसमें भेद ज्ञान की चर्चा नहीं की हो, चाहे अस्त्र अधिकार हो, गंध अधिकार हो, पुण्य पाप अधिकार हो, वृक्ष में तो कहने का सवाल ही नहीं है, जीव जीव में तो कहने का सवाल ही नहीं है कि भेद ज्ञान की चर्चा चलती है, लेकिन ये चारों अधिकार में भी भेद ज्ञान की ही चर्चा चली है। जबकि हम समय सार पढ़ने वाले भेद ज्ञान की चर्चा नहीं करते, और जगह और तो कौन करते होंगे, दूसरे तो कौन करते होंगे, बात तो ये सुनने को मिलेगी वो करो वो नहीं करो वो करो वो नहीं करो, जो समय सार पढ़ने वाले भी वेद ज्ञान के प्रयोग की चर्चा नहीं करते क्योंकि विधि का विषय है, प्रयोग तो विधि का विषय है, आत्मा ऐसा है फैसा है वो चलेगा, लेकिन वेद ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, विकल्प की बात आएगी, राग और ज्ञान भिन्न है, देव और आत्मा भिन्न है, एक समय की पर्याय भी भिन्न है, शुद्ध पर्याय भी भिन्न है, केवल ज्ञान से भी त्रिकाली भिन्न है, ये सब बात चलेगी, ये तो एक मिनट में पूरा कर सकते हैं, आगे में 7 सेकंड भी नहीं लगेगी, तो 3 बार बोलने में तो आधा मिनट लगता है, पूरा मिनट भी नहीं लगता है। जो चीज काम की चीज है वो तो वो है तो करे कैसे हैं जी, तो होवे कैसे, ये बात होनी चाहिए,
यही चाहिए।
हाँ ये मतलब तो वहां से वरना तो बात बात रह जाएगी, काम तो हो गया नहीं, ये परिस्थिति हो जाएगी।
ये ज्ञान विशेष जो है ज्ञान विशेष जरा ज्ञान सामान्य ने जोड़ा प्रयत्न करे
परमाणु का उदय चालू है,
वहाँ परिणाम लगता है, परिणाम वहाँ लगता है जो प्रकृति का उदय आया
जी,
आपकी प्रकृति का उदय है तो परिणाम नाराज हो जाता है, उसका अवलंबन होता है। देश की प्रकृति का उदय है तो बिना कारण देश हो जाएगा, बाहर में कुछ ऐसा नहीं होगा लेकिन भीतर में गड़बड़ हो जाए, हमें लगती है क्या अब आराम से बैठे हैं। चित्र विचित्र प्रकार के परिणाम क्यों आते हैं, आते कि नहीं आते हैं, क्यों आते हैं? भीतर में उदय चलता है, भीतर में सावधानी है नहीं, सावधानी बाहर चालू है, पड़ी है, खड़ी है, यही हो जाएगा।
जरा प्रयत्न भी एकदम एक बड़ी थोड़ी वक्त तो चले थे जो लोग जरा देखा तो छुट्टी जाएगा।
जिस क्रम से आपको जाना है उस क्रम से जानी है, आपको एक अंक आता नहीं पर 87 कैसे होता है कैसे पता चलेगा? 4, 8, 7, 87 होता है। पहला एकड़ा आता नहीं और 87 कैसे होता है? 87 उनको सीखना है, 87 सीखना है, बस कैसे बनेंगे? काम तो काम तो ढंग से होता है, कोई भी काम पद्धति से होता है। तो वो ठंड के दिन में वो स्वेटर पहनते हैं उनके गुण करके, तो किसी को दे दो, ऊन भी दे दो और सुई भी दे दो, क्या बन जाएगा स्वेटर? है बन जाता है, सीखना पड़ता है, कैसे वो करना वो सीखना पड़ता है। एक छोटी मोटी बात में सब बात सीखना पड़ता है, रोटी भी सीखनी पड़ती है, दाल भी सीखना पड़ता है, एक छोटी मोटी चीज में सब बात सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता? सीखना पड़ता। ये सिद्धांत का प्लान है, प्लानिंग कितना बड़ा है, सर्वोत्कृष्ट, इतना बड़ा प्लानिंग है नहीं जगत में, तीन लोग का नाश बन जाए उसकी कोई व्यवस्था कार्य पद्धति सुव्यवस्था होती है कि नहीं होती है? नहीं, ऐसा कैसे बना? तो कह रहे थे ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, इसकी व्यवस्था क्या है? हम कह रहे वो पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो सुन ले, वो कर ले, वो कर ले, सब बेकार की बात है, नक्का पर झावा नाकवाना है। झावा सब जाएगी ना आपने, जैसे कोई हवा में हाथ करते हो ऐसा करते ही रहे, ऐसा करते ही रहे, क्या हाथ में आएगा धावा नाकने के बाद थक जाएगा।
धुआं लेने बात कर
धुआं को बात कर रहे, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, क्या हाथ में आएगा।
अरे यही तो देखना चाहिए जिससे हम पूछने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या श्रद्धा है या नहीं है।
ठीक है, वो भी उसका भी क्रम से समझ लो, इसलिए तो वो दो बात बताई, दो बात तो हमको समझनी है, ये वो बात को समझ करके फिर आगे चले हैं।
भोग संज्ञा से समझाओ तो समझ सकते हैं उसकी बात को,
क्या
भोग संज्ञा में वाली बात समझ में आ सकती है क्या? उसके प्रति कोई
श्रद्धा आ सकती है?
पहले तो आपको रोग संज्ञा में उसकी आउटलाइन तो मिल सकती है, समझ में आ सकती है, फिर आप इसके प्रयोग में जाओगे तो प्रयोग रोग संज्ञा का निवारण कैसे होता है, निवृत्ति कैसे होती है, प्रयोग से।
तो ये सारे
प्रारंभ में विधि बुद्धिपूर्वक का करने का है, थोड़ा प्रैक्टिस बनने से सहज हो जाता है, बुद्धि लगाने नहीं पड़ती है। जैसे हम पहले समझे कि ये हमारे घर वाले हैं, ये पड़ोस वाले हैं, तो पहले समझ में तो हमें बुद्धि लगाते हैं, फिर देखते ही मालूम पड़ता है कि हमारे वाले नहीं है, तो बुद्धि लगानी पड़ती है, दूसरा दूसरे रूप में दिखता है, पराया पराई दिखता है, पराई की कोई बुद्धि लगाने की कोई वहाँ एक्सरसाइज नहीं होती, देखते ही मालूम पड़ता है कि पराया है, तो प्रैक्टिस से सहज हो जाता है,
परिचय
से
होता है,
परिचय से प्रैक्टिस से काम सहज होने लगता है। शुरू में तो स्वाध्याय पर इसलिए है कि बुद्धि लगा लें अपन, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक घंटा स्वाध्याय हो गया, हमारा काम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, नहीं, बाद में स्वाध्याय के काल में भी और स्वाध्याय के बाद में भी हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाना
चाहिए, ये मेन बात है, बराबर।
जब काम होगा, जहाँ तक हमको हमारा कार्य संपन्न न हो वहाँ तक
हम उसके पीछे लगे ही रहे लगे ही रहे। पूरा उद्यम करना है शक्ति को छिपाए बिना, पूरा उद्यम से काम करना है। ऐसा अभिप्राय में आगे बढ़ते हैं तो मार्ग सुगम में और सरल है। वो आपको एकाग्रता में अभी नहीं जाना है, तो फिर एकाग्रता एकाग्रता करनी नहीं पड़ती, करनी है भी नहीं, हो जाती है एकाग्रता। चीजें ऐसी बार भी ऐसा ही है, हमारा भी कोई विषय में एकाग्रता हो जाती है, कमी नहीं पड़ती है, उसे बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, हो जाती है। ऐसे यहाँ भी अनंत सुख का धाम होने से और दिख जाने से हमारे परिणाम आकर्षित होने लग जाएंगे, अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, पर ये कॉन्सेंट्रेट हो जाने से एकाग्रता जम जाएगी, जाएगी करनी नहीं पड़ेगी। तो उस ध्यान किया था नहीं, ध्यान इनको हो गया था। हम हमारी पद्धति से देखते हैं, हमारी नजर से दूसरों को देखते हैं, अच्छा है नहीं, उनको हो गया था। अच्छा तो चक्रवर्ती होते हैं, सब सुविधा उनको होती है, तो क्यों जंगल में चले जाते हैं? क्योंकि उपयोग लगता नहीं है, उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है। तो मैं राज छोड़ रहा हूँ, रानी छोड़ रहा हूँ, ये वैभव छोड़ रहा हूँ, अनुकूलता छोड़ रहा हूँ, तो कोई उसको दुख नहीं होता है, तो इसको आर्ध ध्यान नहीं होता है। जैसे हमारे नाक में ये कप भर जाता है तो हमको भारी भारी लगता है, तो निकाल देते हैं, रख नहीं सकते, तो उस बोझा को उठा नहीं सकते हम, बोझा रुक लगता है तो ऐसे ही निकाल देते जोड़ दे। जैसे उनको ये बोझा हो गया सर, तो सेठ छूट जाता है, सेठ जो छूट जाता है तो अच्छा हम उसको पट लड़ाएं वहां पर कि भाई वो जंगल में क्यों चले गए, इनको जो परिवार तो बहुत हो बड़ा होता है, उनको तो 56,000 रानियां तो है, लड़के कितने लड़के हैं, कितने हो गए, लाखों की संख्या में तादाद में ऐसे बताए उनके परिवार में, तो कोई उनको ऐसा नहीं कहेगा महाराज या जो भी कहना है वो भी शासन बोलते हैं कि आपको तो एकांत में ध्यान करने का है ने? तो अपने तो बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, उसमें एक अच्छे से झोंपड़ी बना रहे, आप जैसे चाहो ऐसा कर दें, उसमें मेहन चाहो तो मेहनत कर दे, झोंपड़ी चाहो तो झोंपड़ी कर दे, उसमें आप गिरा दो, हम तो दर्शन को होता रहे पर आपका काम भी होता रहे, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते क्या बोलो? हमारे महल में के बगल में, नगर के बगल में बाग वन उपवन सब बहुत सुंदर से सुंदर होते हैं, अच्छे से अच्छे होते हैं गार्डन, तो जैसे चाहो ऐसे झोंपड़ी भी जैसे तो भी गार्डन रेस्टोरेंट होते हैं ना, झोंपड़ी लगाते हैं आर्टिफिशियल घास फूस लगा करके, वो नहीं बना सकता वो लोग, तो हमारे से दूर तो नहीं हो, आपको ममता नहीं है लेकिन हमको ममता है, तो थोड़ा आपका दर्शन तो रहते हैं हम लोग, है हमारे से दूर मत हो, ऐसा क्यों नहीं किया, चलो ये हमारा तर्क है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बिठाई उन लोगों ने, सब ऐसी व्यवस्था वो बिठाते हैं शायद, तो क्यों स्वीकार नहीं करते, व्यवस्था बिठाने वाले को बिठाएंगे भी लेकिन स्वीकार करने वाले को स्वीकार में जो आपत्ति आती है वो आपत्ति उसको बर्दाश्त होती नहीं है। मेरा मैं पूरा जगत से सर्वथा सर्वदा भिन्न हूँ, मेरा आप सबों से जितना संबंध है उतना ही सभी पदार्थों से संबंध है, नहीं ना एक शब्द से कुछ ज्यादा मेरा नहीं। तो बहुत की बात तो बाहर करते हैं, एक आदमी धनी हो गया है तो इनके परिवार वाले वंदना करने को आते कि नहीं आते, चलिए ये धनी है उपदेश देते हैं, उसकी सभा में उनके परिवार वाले बैठेंगे, कहीं माँ बैठेंगी, बाप बैठेंगे, पत्नी बैठेंगी, बहन बैठेंगे, पुत्र बैठेंगे, उसको क्या दिखता है
क्या दिखता है उसका, उसको पत्नी पत्नी नहीं दिखती है, माँ माँ नहीं दिखती है, बाप बाप नहीं दिखता है, बेटा बेटा नहीं दिखता है, इसी का नाम नहीं पता है। पहले तो हमारे थे ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, कि ये नहीं दिखता है। जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आप दिखते हैं, वैसे ही आप दिखते हैं वैसे ही आप दिखते हैं, ऐसी दशा होती है उसको मैंने पता कहते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं है। नहीं है ये विकराकता उतनी आती है तो मुझे पता नहीं आ जाता है, ऐसे मैंने मुझे पता है ही नहीं, अकबर है मेरे उनको विकल्प नहीं आ सकता, विकल्प नहीं आ सकता। इतनी वितरागता प्रचुर वितरागता प्रचुर प्रसंवेदन प्रचुर शांति के वेदन में रहते हैं, कभी थोड़ा विकल्प आया तो शास्त्र लिख दिया या उपदेश चल गया, चल गया सब चल गया, हो गया सब गया, बात खत्म, किससे भी लेना देना नहीं। यहाँ तो वक्ता श्रोता को खुशी करके खुद खुशी होने लगता है कि देखो देखो मेरी बात कितनी उसको अच्छी लगती है, शुक्र शुक्र होने लग जाता है, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा विकराग भाव में उन्होंने उपदेश देते हैं, इसलिए उसका उपदेश का स्थान बताया है। ऐसी बात है विकराग ताक्ष है, विकराग दर्शनच है, विकराग ताज सर्वथा सर्वदा सर्वत्र ये उपादेश है, मार्ग सिद्धांत है बच्चे, पक्षी उत्पाद ने बात पक्षी सिद्धांत है उत्सर्ग प्रयोग। तो यहाँ थोड़ा विज्ञान का विषय प्रारंभ करेंगे आपको, नहीं वही चलेगा अभी तक ठीक चलेगा पूरा विज्ञान में विज्ञान के प्रयोग अंतरवलोकन ज्ञान और राग प्रज्ञा चल रहे हैं, ज्ञान में है ना, ज्ञान में अपने को राग है तो मैं नहीं, ये बाइफर्केशन करता है बराबर
आ
गया है, भाव को कैसे मालूम पड़े उसको, तो क्या है कि पूरा अपना परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप भाषित होता है उसके, तो 10 लक्षण स्वरूप निश्चय के प्रकरण में भी है तेरे से पूरे, ये तो कैसे होता है उसका प्रोसेस भी दिया है, पर हुआ तो जितना अनंत महिमावंत है उतनी महिमा उम्र पड़ती है, स्वरूप सम्यकता के जो पुरुषार्थ है वो उदय में परिणाम जाता है तो झटका खाक के इधर आता है, बार बार जोर से आता है, मैं ये हूँ मैं तो ये हूँ, पूरी शिक्षक की उत्पत्ति मूर्ति दिखती
प्रश्न की भूमिका नहीं होती है, तो
प्रश्न की भूमिका नहीं है तो फिर उसकी ऐसी धुन लगती है कि दूसरा कुछ मानो दिखता ही नहीं है, क्योंकि धुन में चलता है कहीं ध्यान ज्ञान ही नहीं रहे, लक्ष्य ही नहीं रहे, उदासीनता क्या कहें, क्योंकि इस वक्त जो रुचि की पोजिशन है वो उसको अनन्य रुचि कहते हैं, जैसे पतंगा विकल्प विचार नहीं करता कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आप जाओ के कल जाओ, थोड़ी देर के जाओ के पीछे जाओ, झपट लगाता है ऐसे अनन्य रुचि पैदा हो जाती है,
परिणाम अन्य रह नहीं सकता, इसलिए उसका काल ही लंबा नहीं दिया है। परिणाम अन्य रूप से रह ही नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप अपने रूप में भाषित हुआ है। ये सब छूट जाता है, मैं मनुष्य हूँ छूट जाता है, पुरुष स्त्री हूँ छूट जाता है, सब छूट जाता है। जैसा भगवान सिद्ध परमात्मा है, बस वो ऐसा नहीं है। भाषित होना मैंने लगना, लगने लगता है, अभी जैसे लगता है कि मैं फलाना हूँ, वो लगना छूट गया, वो लगना हो गया कि मैं साक्षात भगवान हूँ। ऐसे परिणाम में जाते तीव्र भेद ध्यान चलता है सहज रूप से। बहुत भूख लगी हो, बहुत तृषा लगी हो, वो भी धीरे धीरे पानी पी नहीं सकता, धीरे धीरे खा नहीं सकता, वो टूट पड़ता है, उसका प्राण जाता था तो टूटे टूट पड़ता है। ये तो निधि मिलती है, अक्षय निधि मिलती है, कैसे रह जाए, परिणाम है इतने जोर से उठते हैं।
दशा में आता है तो क्या वो एकांत में आता है?
ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जो तिरियन छूते हैं, नारकीय होते हैं, उसको कोई ध्यान की कोठरी, कोई बंगला, कोई मकान, कोई व्यवस्था पड़ी होती है। तो मनुष्य में सबको तो कोई सुव्यवस्था ऐसी होती है। और जो परिणाम पुरुषार्थ के सम्मुख के पुरुषार्थ के जोर से चलने लगे, वो दूसरे को क्या देखता है, कौन सा स्थान है, बैठा हूँ के खड़ा हूँ के चलता हूँ के लेटा हूँ के, वो क्या देखता है? सुभाग भाई तो अस्वस्थ थे, शारीरिक अवस्था ही उनकी ऐसी थी, तो आखिरी दिनों में गुजर रहे थे,
उनको लेते लेते हुई
लगता है ऐसा मुझे तो पूछा नहीं किसी को, लेकिन लगता है ऐसा। उनके सुता सुता में अनुभव थो है, प्रश्न तो बहन में नहीं है, जयरे निरुकल सहानुभूति थे तेरे आए तो ध्यानस्थ अवस्था में हो तो थे, बीजे अवस्था में न थे एम प्रश्न है। वो कोई सिद्धांत नहीं था कि एकांत में बैठा हुआ चारे देने था।
हाँ भी भगवान तो शेर की पर्याय मुनि
इतनी बात जरूर है कि दूसरे से बातें नहीं चलती हो, कोई दूसरे दूसरे काम में लगे नहीं हो, उपयोग कहीं और जगह लगा नहीं हो, क्योंकि उपयोग तो उधर जाना है, ये बात जरूर है। नींद नहीं हो, नहीं हो सकता, बाकी अकेले में कोई भी हालत हो सकती है, जो है वो नहीं बन सकते, दूसरी प्रवृत्ति में भी उपयोग हो और अनुभव हो जाए वो तो कैसे बनेगा, तो उपयोग होता है, तो उसके पहले तो इसकी जो धुन चलती है उसमें उपयोग का ही नहीं रहता। जो पिछले क्षण जो है, पीछे के जो क्षण है इसके आगे वाले के, उसमें उतनी धुन चलती है तो कहीं उपयोग लगे ही नहीं उसका, ऐसी तो स्थिति है। वो बड़ा नहीं 304 वाला, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, निरालंबन रूप से धूम चलती है अंदर से, तो दूसरे में उतर जाता है, तो उस वक्त तो कोई दूसरी प्रवृत्ति उपयोग को होने का सवाल नहीं रहता। लेकिन तो कई लोग ऐसा मानते कि ध्यान में बैठे तो ये उपयोग हो, ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। जिसको अनुकूलता है वो ध्यान में बैठते भी है, लेकिन ऐसे अनुकूलता नहीं भी होती है, ऐसे भी जीव होते हैं, कोई आपत्ति नहीं।
एक ने बोला था सीढ़ियों शब्द चलते हमको हो गया, हम गिर पड़े,
कौन
कोई थे ना, तो गुरुदेव ने मान लिया कंधा होता
है,
तो गुरुदेव ने स्वीकार भी कर दिया, तो कंधा सब चलते चलते ही हो सकता
है, हो सकता है, हो सकता है। शिक्षा जी बड़ा सर
उपयोग और सपने में होना चाहिए।
जिसको अनुकूलता है वो तो ऐसा क्षेत्र काल भाव में चले जाते हैं कि जहां एकांत मिले उसको, लेकिन जिसको नहीं है वो तो भीतर में एकांत बना लेते हैं, बाहर कुछ भी हो ना उपयोग नहीं है तो बात खत्म, बाहर कुछ भी हो हमारा उपयोग नहीं है तो बात खत्म।
जब तक मेरा संसार में उपयोग है तो संसार है, संसार में उपयोग नहीं है तो संसार नहीं है।
સોગાણી જે લખ્યું ને, હું તો મારા હું તો એકાંત બનાવી લઉં છું એમ, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હું મારું એકાંત બનાવી લઉં છું, એનો બી એ જ અર્થ છે ને।
भावभाषण की बात तो जिस उपयोगात्मक दशा में भावभाषण हुआ उसकी लब्ध परिणति बन जाती है, रस बहुत है उसका, रस बहुत है उसकी परिणति बन जाती है, तो इसकी तो एक परिणति बन गई। ऐसा तो फिर फर्क हो गया, उसके परिणाम में इतना बड़ा फर्क हो गया कि परिणति बन जाती है।
ज्ञानी परिणति राग की बन जाती है, जैसे अज्ञानी परिणति राग की बन जाती है,
ऐसे ऐसे इसकी भी परिणति बन जाती है आत्मा के। સમાજમાં ઘણા જીવો એવા હોય છે કે ધર્મ ઈચ્છતા હોય છે, આત્મકલ્યાણ ઈચ્છતા હોય છે, પણ એને કોઈ યોગ નથી બેસતો। એવા કોઈ ઈચ્છતા જીવોનું કોઈ કલ્યાણ થવાનું હશે તો અમારો યોગ થઈ જશે, એમ કે થોડી પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ, સતાવધાન કર્યા પછી એમની પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ છે। એ કોઈ છે જુદી જાતના વ્યક્તિ, કોઈ જુદી જાતની છે, થોડોક તો વિરોધી પછી પ્રસિદ્ધિ કરાવી નાખે છે, બધા સાધુઓ બધા વિરોધમાં આવી ગયા, સ્થાનક વાસીના એ લોકો વિરોધ કરવાનો, વિરોધ થાય એટલે ખગવાટ થાય એટલે પ્રસિદ્ધિ થઈ જાય, આમ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા, પછી તો જે કલ્યાણને ઈચ્છતા હોય એ તો ગોતતા ફરતા હોય છે, એની તો ખોજ હોય છે, એનો મેળ ખાઈ જશે।
આ તો ઈચ્છા જેવી જ વાત નથી. જીવન મૂર્તિ વગર બીજી કલ્પના કરવા જોઈએ.
જાણકારી દેવો માં જ્યાં આવતી
હોય,
દેવો માં સારી જાણકારી ઉજાતી હોય.
આગ્રહ ચલે સત્સંગ માટે આવ્યા, ઘર છોડીને આપ સત્તર માણસો
અંતરંગ શુદ્ધ નથી, એમાં અંતરંગ શુદ્ધ નથી, એમાં દર્શન ગુણ જ પરિણામ છે.
અંતરંગ
શુદ્ધ નથી,
એ
દર્શન ગુણ કેમ તોડવું?
બસ શુદ્ધાંતકરણ છે, ઈચ્છવું પોતાનું કલ્યાણ.
એ તો એની મેળ ઉભું થયું છે કે
હા, એની મેળ તો પછી શું કરવું? મને નથી મેળ થતો, સમસ્યા તો છે. તો જ્યાં ઉભો છે એને તો તપાસો. પાણી કા મટકા ફૂટ જાતા હૈ તો દેખતે રહેતા હૈ, હા પતા હૈ, તો ફૂટ ફૂટા પાણી જાતા એસા કોઈ કરતા હૈ,
પાણી
ભી જાને નહીં દેતા હૈ, તો ઘી તો કૈસે જાને દેગા? ઘી કા બર્તન ફૂટા હોય તો દેખ લેગા, કહે હા તો ખરાબ પતા હૈ, તો ઉસમે જાતા હૈ ઘી.
એટલે આ જે વાત થઈ વિચાર છે એવું લાગવું જોઈએ.
કેટલા નુકસાન હો રહા હૈ અગર મેં અપને લક્ષ્ય મેં નહીં આતા હું, આત્મકલ્યાણ કે લક્ષ્ય મેં નહીં આતા હું, તો નુકસાન કેટલા હો રહા હૈ વો નહીં દેખના. હા ખબર હૈ, વો તો બહુ નુકસાન હોતા હૈ, વૈસા ચલતા હૈ છોટા સા, એસા કોઈ નુકસાન દેખ સકતા હૈ ક્યા?
જી
કોઈ બરદાસ્ત નહીં કરે, પાણી ભી નહીં જાને દેતા, ઘી તો કૈસે જાને, દોડ કે બંધ કરેગા ઉસકો, કે દૂસરે બર્તન મેં લગા દે, ચલા જાયેગા પૂરા કા પૂરા.
નુકસાન લાગુ છે,
નુકસાન નુકસાન નહીં દિખતા, ઇસકા કોઈ ઇલાજ નહીં હૈ, ઇસકા ફિર કોઈ ઇલાજ નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહાં તો નુકસાન કી રુચિ હૈ.
પોતાના પગ ઉપર કુવાડે મારે ને પાછો મજા.
પછી અત્યારે બધા અર્થઘટન જુદી રીતે થવા માંડ્યા છે. તમે કહ્યું આ કાળમાં કલ્યાણ થશે તો કૃપા દીધું, હવે કોઈ હોય તો હામી જોવું નહીં. અભિપ્રાયમાં ઢાળી દે છે, મિસકોન્સેપ્ટ છે એમાં એને લઈ જાય છે. ખરેખર શાસ્ત્ર છે તો આગમ છે, તો ત્યાં એમનો કહેવાનો જે અભિપ્રાય છે એ સમજ્યા વગર પોતાના અભિપ્રાયમાં એને કન્વર્ટ કરી દેવું, શાસ્ત્રને શસ્ત્ર બનાવવા જેવી વાત છે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે હું શાસ્ત્રમાં છું, શાસ્ત્રમાં મારી વાત આવે ત્યારે હું રાજી થાઉં, બીજી વાત આવે ત્યારે હું ચૂપ થઈ જાઉં.
માર્ગ
નો મર્મ એ છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. શાસ્ત્રમાં માર્ગ ની તો પરિભાષા આવી ગઈ, એની સમ્યક દર્શન કેમ થાય, સમ્યક જ્ઞાન કેમ થાય, સમ્યક ચારિત્ર કઈ રીતે થાય, એ વાત તો પોતાને શાસ્ત્ર નહીં કે વિધિ નહીં કોઈ કહી શકે. વિધિ ભાષામાં આવતી નથી, આવી શકતી નથી. હું આપણે જ પૂછો, કોઈ રોટલી ઉપર વેરે મારે કેવી રીતે ફેરવવું કે રોટલી જાડી પાતળી ન રહે, કેવી રીતે બતાવશો તમે? તમે સમતોલ રાખો, સમતોલ પણ સમતોલ રાખો એ બરાબર સમજાય, કેવી રીતે રાખો એ સવાલ છે. તો કોઈ પ્રેક્ટિસ કરો, બીજું શું કરે બોલો, એને શીખવા માટે શું શું કઈ પુસ્તક લખી શકાય છે? આ તમારે આવે છે ને રસોઈ શાસ્ત્ર, ચોપડી માસ રસોઈ આવડી જાય કોઈને? કોઈને ના આવડે. એની આખી વ્યાખ્યા લખું, લોટમાં પાણી નાખવું, એનો પિંડ કરવો, એને ટૂંકવું, એને ગણું કરવું, એને વિલનથી વણવું, એ બધી વાત આપી, પણ કેવી રીતે વણવું એની ભાષા હોય ને કોઈ દિવસ? આ તો સ્થૂળ વિષય છે, નજરે દેખાય એવો, આંખેથી દેખાય એવો સ્થૂળ જ્ઞાનનો વિષય છે. આ તો અંતર્મુખ થવાનો વિષય છે, સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ તે સૂક્ષ્મ છે. એ ક્યાંથી શાસ્ત્રમાં વાંચે? પછી વાંચીને સંતોષ લઈ લે કે હા મને બધી ખબર પડે છે, બરાબર છે, માર્ગ તો આવે જ છે, મર્મની આંખમાં આવે. એટલે એમને એમ કહ્યું કે મર્મ તો જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં રહ્યો છે. કે જ્ઞાનીઓનું હૃદય એટલે શું? આ કંઈ પંપિંગ સ્ટેશનની વાત નથી. એનું જે અંતર્જ્ઞાન છે, અંતર પરિણમન છે, એની અંદર એ મર્મ છે, એ પરિણમન સ્વરૂપ છે. માર્ગનો મર્મ તો પરિણમન સ્વરૂપ છે, એ પરિણમનને તો એ છે, એમને ચેષ્ટાથી સમજાવે છે. જાગ્રત ચૈતન્યની ચેષ્ટા છે અને ગુણાતિશયથી પ્રભાવિત થયેલા જેમના વચનો છે એનાથી એની કંઈક ઝલક મળે છે, એનો કંઈક ટોન ધ્વનિ આવે છે. એનાથી યોગ્ય જીવ, પાત્ર જીવ છે, એ આખી વાત પકડી લે છે. એને મળે છે થોડું, પૂરું તો બહાર આવી શકતું નથી, પણ જેટલું બહાર આવે છે પ્રત્યક્ષ યોગમાં, એનાથી યોગ્યતાને પૂરું પકડવાની શક્તિ હોય છે, આખી લાઈન પણ પકડી લે છે એને. એટલે યોગ્યતામાં શક્તિ છે, પણ એવો મેળ ખાય ત્યારે જ કામ થાય છે, ત્યારે જ એને પ્રત્યક્ષ યોગ થયો અને પ્રત્યક્ષ યોગનો લાભ થયો એને.